आज का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सीनियर सेकेंडरी लेवल का। तो न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है, तो उसमें हम जो है फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर हम यूज़ क्यों करते हैं, दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अगर हम कंप्यूटर यूज़ ना करें तो क्या हमारी लाइफ में इफ़ेक्ट पड़ेगा, और कंप्यूटर यूज़ करेंगे तो हमारी लाइफ कैसे चलेगी। तो नॉर्मल अगर हम लाइफ की बात करें, तो अगर आपको एक कॉलेज में अटेंडेंस सिस्टम भी रखना है तो आप हार्ड कॉपी पे अटेंडेंस रखते हैं, और जब आपको उसको कंपाइल करना हो, अगर एक सेमेस्टर एंड हुआ या फिर वन ईयर बेस अगर आपको कंपाइल करना हो, तो आपको बहुत सारा टाइम लेना पड़ेगा उसको कैलकुलेट करने के लिए। अगर आपने टोटल 40 लेक्चर्स लिए हैं, तो हर एक अगर 100 स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में, तो 40 × 100 रोज़ जो है आपको हर एक एलिमेंट्स को देखने पड़ेंगे। लेकिन अगर वो आप कंप्यूटर की बात करें, तो यही आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। अगर हम कंप्यूटर में अगर देखें, अगर आपने MS Word, MS Excel आजकल आ गया है, अगर MS Excel में ऑलरेडी वो टेबल में रहता है और उसमें आपने डेटा एंट्री कर रखी है, तो उसको एक्सेस करना या उसको कैलकुलेट करना, या आपको उसमें सॉर्टिंग परफॉर्म करना हो कि कौन कितने स्टूडेंट्स जो है आपके हाईएस्ट अटेंडेंस है, कितने स्टूडेंट्स की कम अटेंडेंस है, या कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स अच्छे हैं, तो वो आपको ईजी हो जाएगा। इट्स मीन जो कंप्यूटर है वो आपकी लाइफ को ईजी बनाता है। जो भी आप चाहे डेटा को आपको कहीं स्टोर करना हो, जब आप उसे हार्ड कॉपी में स्टोर करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा बल्की हो जाता है, उसमें सर्च करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, और जब उसे सॉफ्ट मतलब कंप्यूटर में आप अगर उसे स्टोर करते हैं, तो वही काम आपका एक्यूरेटली परफॉर्म होता है और उसको ईजली आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर के बेनिफिट्स हैं। और कंप्यूटर के अगर हम बेनिफिट्स डे टू डे लाइफ में देखें, तो आजकल सारे फॉर्म देखें तो ऑनलाइन ही लगभग भरे जाते हैं। इवन गवर्नमेंट का स्लोगन ही मेक इन इंडिया है, जिसमें डिजिटल इंडिया की बात हर जगह की जा रही है कि हर एक चीज़ डिजिटाइज होना चाहिए। इवन अगर आप देखें कि इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, और हर एक स्टेट्स में अगर ड्राइविंग लाइसेंस देखें, तो सबको अपने स्टेट्स का एक अलग ड्राइविंग लाइसेंस इशू होता है, बट उसको अगर किसी और स्टेट में वो पर्सन जाता है तो उसको रिकॉग्नाइज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है किसी अदर पुलिस ऑफिसर को, कि इन केस फॉर एग्जांपल अगर किसी ने यूपी में एक ड्राइविंग लाइसेंस लिया है और वही ड्राइविंग लाइसेंस लेके वो महाराष्ट्र में जाता है, दैट इज़ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, बट अगर वो महाराष्ट्र पुलिस उसको एक्सेस करना चाहे या उसको वेरीफाई करना चाहे, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग रहता है। जबकि अगर इसी चीज़ को अगर हम कंप्यूटराइज कर देते हैं, कंप्यूटराइज का मतलब क्या है कि यूपी में जितने भी ड्राइविंग लाइसेंस इशू होते हैं, हम उसे एक कंप्यूटर में स्टोर करें और उसका एक्सेस जो है महाराष्ट्र में भी हम उसको फैसिलिटी प्रोवाइड कर दें, तो उसमें क्या होगा कि जो हमारे महाराष्ट्र पुलिस में कोई रहेगा और वो उसको वेरीफाई करना चाहेगा कि वो ड्राइविंग लाइसेंस करेक्ट है या नहीं है, तो वो उसको ईजिली वेरीफाई कर सकता है। इसीलिए जो है गवर्नमेंट ने अब क्या किया है कि हर एक स्टेट के ड्राइविंग लाइसेंस जो भी RTO है, उनमें ये किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटाइज हो जाए। तो डिजिटाइजेशन के लिए आपको रिक्वायर क्या होगा, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर है क्या, वो दैट इज़ अ डिवाइस, और वो डिवाइस ऐसी है जिसमें आप जो है डिजिटल फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, बट जो आप इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं वो आपके जो है आपके रीडेबल फॉर्मेट में रहता है, लेकिन जब वो कंप्यूटर स्टोर करेगा तो वो उसको डिजिटल फॉर्मेट में रखेगा। तो कंप्यूटर क्या करता है कि उसको डिजिटल फॉर्मेट मतलब 0 और 1, मतलब कंप्यूटर दो ही चीज़ समझता है, या तो 0 समझेगा या तो 1। अगर आपने इवन मेमोरी लिखा है, आपके लिए MEMORY है, बट कंप्यूटर के लिए उसके इक्विवेलेंट 0 और 1 में कुछ डिजिट्स होंगे। तो अगर हम एक कंप्यूटर देखें कि आप मार्केट में गए और एक कंप्यूटर आपने परचेस किया, तो कंप्यूटर आपने परचेस किया और जो आपको सेल करने वाला है उसने कहा कि अगर आप बेयर कंप्यूटर लेंगे, मतलब उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल ना करेंगे, तो वो आपको सस्ते में दे देगा, तो आपने बेयर कंप्यूटर परचेस किया। अब उस कंप्यूटर को अगर आप यूज़ करना चाहेंगे तो आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, और उसको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना होगा, उस कंप्यूटर में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने होते हैं। आपने उसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम देखें, विंडोज़ जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो विंडोज़ के बहुत सारे वर्जनस हैं, विंडोज़ XP 7 8 10, तो ये आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि एक यूज़र मतलब जिन्होंने परचेस किया है वो कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकें। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आप जो है कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, वो आपके लिए कुछ नहीं है। तो एक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट है, दैट इज ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर एंड नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो अगर हम देखें कि कंप्यूटर में ये कितने पार्ट्स हो सकते हैं, तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम देखें तो उसमें इनपुट डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस होती है, और एक पार्ट होता है जो प्रोसेसिंग का होता है। तो प्रोसेसिंग में आपका मेमोरी भी आता है और प्रोसेसर भी आता है। तो बेसिक आर्किटेक्चर अगर कंप्यूटर का अगर आप देखें, कहीं दुकान से आपने परचेज़ किया तो वो आपको कीबोर्ड दे देगा, माउस दे देगा, फिर आपको एक सीपीयू देगा, सीपीयू मतलब सीपीयू रैक देगा वो, जिसके अंदर प्रोसेसर रहता है, मदरबोर्ड रहता है, बट वो कम्बाइंडली वो आपको एक सीपीयू जो है रैक दे देगा, और फिर आपको मॉनिटर वो आपको दे देगा कि अब आप इसे जोड़ करके कंप्यूटर बना लीजिए और इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो कीबोर्ड है वहाँ उसके थ्रू जो है आप कोई भी चीज़ एंटर करते हैं, क्योंकि कीबोर्ड में ए बी सी डी 1 0 1 2 3 और कुछ स्पेशल सिंबल्स मेंशंस होते हैं, तो उसको यूज़ करके आप जो है इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में एंटर करते हैं। तो दैट्स वाई दैट इज़ अ इनपुट डिवाइस। और ऐसे ही आपका जो है माउस के थ्रू करते हैं, तो माउस भी एक आपका डिवाइस है, वो इनपुट डिवाइस है, और वो आपको डायरेक्टेड इनपुट डिवाइस है, मतलब आप किसी को राइट क्लिक करना चाहें या फिर उसको डबल क्लिक करना चाहें तो माउस से आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर कोई आइटम कंप्यूटर पे ड्रैग करना चाहें या कॉपी पेस्ट करना चाहें तो वो भी आप माउस से परफॉर्म कर सकते हैं। फिर ये जो भी आप इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं वो आपके प्रोसेसिंग में जाता है। तो प्रोसेसिंग मतलब वो सीपीयू जो आपका रैक है उसमें जाता है, जिसमें मदरबोर्ड भी रहता है, आपका हार्ड डिस्क भी रहता है, मदरबोर्ड के ऊपर रैम रहता है, प्रोसेसर रहता है। तो मेनली हम हार्ड डिस्क की बात करते हैं। तो हार्ड डिस्क क्या है, वो आपका सेकेंडरी स्टोरेज है। सेकेंडरी स्टोरेज मतलब अगर आपका कंप्यूटर फिर से रीस्टार्ट होता है तब भी इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर रहती है। मदरबोर्ड पे रैम होता है, दैट इज़ ऑल्सो मेमोरी यूनिट, दैट इज़ स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो वो क्या करता है कि जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है तब तक उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है, और जैसे ही वो कंप्यूटर आपने ऑफ किया और या रीस्टार्ट किया तो देखेंगे कि उसमें वो इन्फॉर्मेशन नहीं एग्जिस्ट करती। फिर उसके बाद आता है आपका प्रोसेसर। तो प्रोसेसर क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ रैम वो इन्फॉर्मेशन को एग्जीक्यूट करता है। तो इन्फॉर्मेशन को एग्जीक्यूट करने की क्या मीनिंग है, हम आपको बेसिक एग्जांपल लेते हैं। नाउडेज सब लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो सिमिलर टू कंप्यूटर, उसमें भी आपका रैम रहता है, सेकेंडरी स्टोरेज भी रहता है जो आपका चिप रहता है, इसको मेमोरी कार्ड आप कहते हैं, या फिर इंटरनल स्टोरेज रहता है, देयर इज़ ऑल्सो सेकेंडरी स्टोरेज जिसपे आप इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, और जब आप मोबाइल को रीस्टार्ट करते हैं तो उस पर इंफॉर्मेशन इरेज नहीं होती, तब भी उसमें एग्जिस्ट करती है। रैम भी आपके मोबाइल में रहता है, आप कोई मोबाइल परचेस करने जाते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि 1 GB रैम है, 2 GB रैम है, तो वो आपका मेमोरी है जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, प्लस प्रोसेसर उसी इंफॉर्मेशन को लेकर के एग्जीक्यूट करेगा। फिर आपके पास आउटपुट स्क्रीन रहती है, जो डिस्प्ले स्क्रीन है, दैट इज़ आउटपुट यूनिट। तो मोबाइल में वैसे जो टच स्क्रीन मोबाइल्स होते हैं उनका इनपुट और आउटपुट एक ही प्लेस होता है, आप उसको एज ए इनपुट भी यूज़ करते हैं और जब उस पर डिस्प्ले आता है तो वो एज अ आउटपुट यूनिट भी वर्क करता है। तो जो बेसिक आर्किटेक्चर है या ब्लॉक डायग्राम है वो क्या है कि एक इनपुट होगा जो अटैच होगा मेमोरी यूनिट से और प्रोसेसर से, और फिर वो अटैच होंगे आउटपुट यूनिट से। तो मेमोरी यूनिट में आपका प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी आ सकता है, और सेकेंडरी मेमोरी में आपके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे मैंने एक हार्ड डिस्क का एग्जांपल लिया, या फिर मोबाइल में इंटरनल स्टोरेज का एग्जांपल लिया, ऐसी सीडी रोम हो सकता है, डीवीडी हो सकता है, पेन ड्राइव इज़ ऑल्सो अ सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल है आपका। फिर प्रोसेसर होता है, तो आपका जो प्राइमरी मेमोरी है दैट इज़ मेन मेमोरी रैम, उससे आपका प्रोसेसर अटैच होता है। और एक प्रोसेसर जैसे आपका i3 एक प्रोसेसर है, हम कभी कंप्यूटर आप परचेस करने जाएं तो आप देखें तो आपको जो सेलर है वो कहेगा कि हमारे में i5 प्रोसेसर है या फिर i7 प्रोसेसर है, लेटेस्ट प्रोसेसर आपका i7 है। तो प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर जो है वो कंप्यूटर में एक पार्ट होता है जो उसके प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। अब प्रोसेसिंग की क्या मीनिंग है, प्रोसेसिंग की मीनिंग ये है कि इन केस आप मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं तो गेम खेलते समय इन केस आपने कार का कोई गेम खेला है और आप कार को एक्सेलरेट करना चाहते हैं, तो एक्सेलरेट आपने इनपुट बटन प्रेस किया एक्सेलरेशन का और वो सारे इंस्ट्रक्शन आपकी मेमोरी में एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बट वो एग्जीक्यूशन परफॉर्म किसके द्वारा होगा, वो प्रोसेसर के द्वारा होगा। तो प्रोसेसर क्या करेगा, उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा जिसके थ्रू एक कार की स्पीड इंक्रीज हो सकती है, सो दैट इज़ अ प्रोसेसर। तो प्रोसेसर क्या करता है, किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। तो एग्जीक्यूशन की क्या मीनिंग है कि आप उसको रन करते हो। जैसे मैं आपसे कहूँ आपकी जनरल लाइफ में, मैंने आपसे कहा कि आपको जो है दिल्ली टू गाज़ियाबाद जाना है, और दिल्ली टू गाज़ियाबाद मैंने एक प्लान आपको बता दिया कि देखिए यहाँ से आप दिल्ली से इस नंबर की बस पकड़ेंगे तो आप जो है गाज़ियाबाद पहुँच जाएंगे। बट उस प्लान को एग्जीक्यूट करने का काम क्या है, वो आपका है। तो आप उसे एग्जीक्यूट कब करेंगे, जब उस प्लान पर आप चलेंगे। तो वैसे ही प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर क्या है कि वो प्राइमरी मेमोरी रैम से इंस्ट्रक्शंस रहते हैं उसको लेता है और उसको एक लॉजिक के थ्रू एग्जीक्यूट करता है। तो इसलिए प्रोसेसर में टू पार्ट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट और ALU। ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, वो कंट्रोल करता है इंस्ट्रक्शन को, और ALU जो है वो अर्थमेटिक लॉजिक जो भी ऑपरेशंस हैं, लाइक आपको अगर A प्लस B, अगर A की वैल्यू 5 है और B की वैल्यू 4 है और उसका समेशन परफॉर्म करना है, तो ALU उसको परफॉर्म करेगा। तो A प्लस B वो 5 प्लस 4 ऐड करके 9 करेगा और वो उसको मेमोरी में स्टोर कर देगा। तो अगर हम स्टेप देखें कि कैसे वो रन कर रहा है, तो मेमोरी यूनिट रहती है, उससे कनेक्टेड प्रोसेसर रहता है। तो मेमोरी यूनिट में आपका A और B की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है और आपको उसको एडिशन परफॉर्म करना है, तो यूजिंग प्रोसेसर। प्रोसेसर उसमें सारे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। तो वो क्या करेगा, वो A की इंफॉर्मेशन अपने किसी रजिस्टर में ले आएगा। रजिस्टर भी आपका एक प्लेस है जिसमें आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपका i3 प्रोसेसर, 64-bit प्रोसेसर आता है, 32-bit प्रोसेसर आता है, तो वो उसके रजिस्टर्स को डिपेंड करता है। तो अगर मान लो 32-bit प्रोसेसर है और हमने मान लिया कि उसमें से 10-bit रिजर्वड है और रिमेनिंग जो है 22-bit आप यूज़ कर सकते हैं एज ए स्टोरेज और A फॉर अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन, तो उस प्लेस पे आप क्या करेंगे, A की इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे, B की इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे और A प्लस B ऐड करके, तो 5 प्लस 4 9, जब आपका रिजल्ट हो जाएगा तो उसको फिर किसी मेमोरी प्लेस पे स्टोर कर देंगे। तो जो आपका मेमोरी रैम में रहता है वो भी कुछ इस तरीके से होता है कि वो बाइट वाइज और बीट वाइज जो है उनका पार्टीशनिंग रहता है। जैसे हम कहते हैं 1 GB रैम, तो 1 GB जो है उसमें रैम है, तो 1 GB स्टोरेज को वो रिप्रेजेंट करता है। अगर 1 MB है तो 1 MB स्टोरेज को रिप्रेजेंट करेगा, और 1 byte इज इक्वल टू 8 bit होता है। तो ये 1 bit जो है आप 0 या 1 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई करेक्टर ही रिप्रेजेंट करना है A, तो A हम एज्यूम करते हैं कि 1 byte ये स्टोरेज लेता है, तो 1 byte इक्वल टू मतलब 8 bit, तो आपका करेक्टर सिर्फ 8 bit में ही स्टोर हो सकती है। तो 8 bit में जितनी इंफॉर्मेशन हो सकती है, जैसे 255 जो है मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हो सकती है, तो उसमें जो है वो स्टोर करेगा। अब जो प्रोसेसर है ये क्या किया है, ये इसको हम एज्यूम करते हैं 1 cycle कि मेमोरी से उसने इंस्ट्रक्शन ले आया, प्रोसेसर में कैलकुलेट किया यूजिंग ALU, और फिर रिटर्न में मेमोरी के किसी टेम्प्रेरी लोकेशन पे उसने वो वैल्यू C की स्टोर कर दी 9। ऐसे ही आप जो है लॉजिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन में क्या होगा, जैसे एंड है, मतलब 2 statements आर देयर, और वो दोनों अगर ट्रू होंगे तो वो ट्रू हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको जो है पश्चिम बिहार से नोएडा आना है, तो आपको यूजिंग आपने कैब लिया, कैब लेकर के आप जो है नोएडा आ गए, तो आपका एंड ऑपरेशन, पहले आप घर से निकलिए, दैट इज़ फर्स्ट ऑपरेशन, सेकेंड आप कैब लीजिए, तो ये अगर दोनों एंड एग्जीक्यूट करेगा तभी आप नोएडा पे आ पाएंगे। तो वैसे ही एंड ऑपरेशन होता है कि दोनों भी स्टेटमेंट आपके ट्रू होने चाहिए तभी वो एग्जीक्यूट करेगा। ऐसे ही और ऑपरेशन होता है। और ऑपरेशन में क्या होता है कि कोई एक भी अगर ट्रू हो गया तो वो ट्रू होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर A जो है आपने ट्रू लिखा और ट्रू, मतलब A इक्वल टू B, और A और B की डिफरेंट वैल्यू आपने दे रखी है, A की वैल्यू 5 दे रखी है और B इक्वल टू आपने 4 दे रखा है, और ऑपरेशन आपने क्या लिखा, C इक्वल टू A इक्वल टू B एक कंपैरिजन, और A इज़ ग्रेटर देन B, अगर ए की वैल्यू पहले 5 है और बी की वैल्यू 4 है तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। बट सेकेंड स्टेटमेंट जो ए इज़ ग्रेटर देन बी है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। अगर ये एग्जीक्यूट कर जाता है इट्स मीन वो ट्रू को रिलीज़ करेगा तो जो स्टेटमेंट है आपका सी का वो एज अ ट्रू एक्सेप्ट होगा। तो देट इज़ लॉजिकल ऑपरेशन और ये ऑपरेशन परफॉर्म होना है प्रोसेसर के थ्रू। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या हो सकते हैं, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, दीज आर द अर्थमेटिक ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन में एंड और नॉट यूज़ होता है। नॉट क्या यूज़ होता है कि अगर आपका कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो अगर उस पर आप नॉट लगा देते हैं तो वो फॉल्स हो जाता है, और अगर फॉल्स है और आपने नॉट लगा दिया तो ट्रू हो जाता है। तो प्रोसेसर जो भी ये प्रोसेसिंग का काम करेगा ये डिस्प्ले कहाँ होगा, मतलब ये आउटपुट आप देखोगे कहाँ, मतलब कीबोर्ड के थ्रू आपने एंटर तो कर दिया कंप्यूटर में ए प्लस बी, मतलब कैलकुलेटर आप यूज़ करना चाहते हैं और ए प्लस बी आपने कर दिया तो आउटपुट आपको कहाँ होगा, वो मॉनिटर पे डिस्प्ले होगा। सो दैट इज़ आउटपुट डिवाइस, मतलब जहाँ पे आपको एक रिजल्ट मिले वो सारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर में। तो प्रोसेसर्स के अगर हम एग्जांपल्स देखें तो इंटेल जो है आपकी कंपनी जो इंटेल प्रोसेसर i1 i3 i5 i7 ये आपके प्रोसेसर्स हैं। पहले 8085 माइक्रो प्रोसेसर हुआ करते थे, 8086 माइक्रो प्रोसेसर हुआ करते थे, और AMD भी माइक्रो प्रोसेसर आपके होते हैं, तो AMD प्रोसेसर भी कई लोग यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर में जो फर्स्ट आपका इनपुट डिवाइसेस हैं उसमें क्या क्या आता है। तो इनपुट डिवाइसेस में आपका कीबोर्ड आता है, माउस आता है जो कि हमने डिस्कस कर लिया है, उसके बाद आपका लाइट पेन आता है और स्कैनर आता है, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन और ट्रैक बॉल। तो ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। देखिए इनपुट डिवाइस का काम हमेशा ये रहेगा कि वो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में इंसर्ट करे, सिर्फ इतना ही काम है। और आउटपुट डिवाइस का क्या काम है कि जब वो कोई भी इंस्ट्रक्शन आपका कंप्यूटर में प्रोसेस हो रहा है तो उसको आप एज अ रिजल्ट विजुलाइज कर सकें या फील कर सकें। तो कीबोर्ड में अगर हम बात करें तो कीबोर्ड जो है कई टाइप्स की आपके कीबोर्ड देखें, तो अगर आपने डेस्कटॉप के साथ कीबोर्ड रखा है तो उस वो जो है क्वाड की बोर्ड रहता है जिसमें 104 कीज़ रहती हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा 104 कीज़ ही रहें। आप लैपटॉप यूज़ करेंगे दैट इज़ ये कह सकते हैं मोबाइल कंप्यूटर है, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं लैपटॉप को, तो उसमें जो कीबोर्ड हो सकता है उसके साइज़ के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट हो। ऐसे ही आपका जो है मोबाइल होता है उसका कीबोर्ड अलग रहता है, उसमें जो टच स्क्रीन की पैड रहते हैं वो उसमें नंबर ऑफ देखें ABCD अलग रहते हैं, फिर इवन स्विच करने का ऑप्शन आपके पास रहता है कि आप जो है स्पेशल करेक्टर्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो स्विच करके स्पेशल कनेक्टर पे आप जाते हैं उसको यूज़ करते हैं। तो टोटल वर्क अगर कीबोर्ड का देखें तो वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो आपकी जनरल लाइफ इन्फॉर्मेशन है और आप उसे कंप्यूटर में स्टोर करना चाहते हैं या फिर उसे प्रोसेस करना चाहते हैं तो यूजिंग कीबोर्ड आप उसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस। माउस, फिर नेक्स्ट आपका माउस है, तो माउस इज़ अ इलेक्ट्रोमैकेनिकल और हैंड हेल्ड डिवाइस है और इट इज़ यूज एज अ पॉइंटर। तो पॉइंटर की क्या मीनिंग है, केवल एज अ डायरेक्शन में आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने कभी भी कंप्यूटर यूज़ किया है तो आपने देखा होगा कि आप माउस को जो है ABCD इस तरीके की एंट्री के लिए तो नहीं यूज़ करते। आप क्या करते हैं कि कोई एप्लीकेशन होता है उसको आप कोई चीज़ सेलेक्ट करनी हो या डीसेलेक्ट करनी हो तो आप जो है माउस यूज़ कर सकते हैं, या फिर कई बार कॉपी पेस्ट में, क्योंकि वो सिलेक्शन से ही कॉपी पेस्ट भी हो सकता है कि आप उसे राइट क्लिक करें और आपके पास कॉपी का ऑप्शन आता है, आप उसे लेफ़्ट क्लिक करके उसे सेलेक्ट कर लें और फिर कहीं जा करके जहाँ पेस्ट करना है वहाँ आप राइट क्लिक करें और पेस्ट कर दें। तो माउस इज़ ऑल्सो अ इनपुट डिवाइस बट इट इज़ अ पॉइंटर, एज अ पॉइंटर डिवाइस की तरह वर्क करेगा। तो माउस भी कई टाइप के होते हैं, ऑप्टिकल आपके माउस होते हैं, कई लेज़र माउस आपके आजकल नाउडेज यूज़ होते हैं। तो टाइप्स ऑफ कई बार ट्रैक बॉल की तरह माउस आते हैं जिसमें अंदर जो है बॉल्स होती है और उसी हिसाब से आप जो है पॉइंटर मूव कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका इनपुट डिवाइस है दैट इज़ लाइट पेन। सो दिस इज़ इनपुट डिवाइस दैट यूटिलाइजेज अ लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन। तो तो आपने कई बार अगर आपने कहीं प्रोजेक्टर या फिर सेमिनार या कॉन्फ्रेंस में अगर आप देखें वो प्रोजेक्टर यूज़ करते हैं तो उसके साथ साथ वो लाइट पेन भी यूज़ करते हैं। तो लाइट पेन इज सिमिलर टू अ माउस, और बट डिफरेंस क्या होता है, यू कैन मूव द पॉइंटर एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन बाई डायरेक्टली पॉइंटिंग टू द ऑब्जेक्ट विद द पेन, जबकि माउस में ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करके करें। माउस को आप जो है मूव करते हैं, चाहे वो ऑप्टिकल माउस हो, और आपके मॉनिटर पे चीज़ों को सेलेक्ट या डिसलेक्ट करते हैं। फिर आपका स्कैनर की बात की जाती है, तो स्कैनर आप आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है कि कभी भी आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करना होता है या कभी भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म में कहा जाता है कि आप फ़ोटो स्कैन कीजिए या फिर सिग्नेचर स्कैन कीजिए, तो वो एज अ इनपुट डिवाइस वर्क करता है। तो स्कैनर आप कैसे यूज़ कर सकते हैं कि आप कोई हार्ड कॉपी आपके पास हो, चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो आपका फ़ोटो हो या फिर सिग्नेचर हो, तो उसे आप क्या करेंगे, एक उस डिवाइस पे स्कैनर पे पुट करेंगे और वो उसको स्कैन करेगा, और स्कैन करने के बाद वो सारी इन्फॉर्मेशन को वो कंप्यूटर में ले जाएगा और कहीं उसको स्टोर करेगा, और फिर आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं थ्रू द मॉनिटर दैट इज़ आउटपुट डिवाइस, और या उसको यूज़ कर सकते हैं किसी एस्पेक्ट में, चाहे वो फॉर्म फिल करने में हो या फिर आपको सॉफ्ट कॉपी उसका स्टोर करना हो, तो स्कैनर भी क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है। आजकल बहुत सारे स्कैनर्स ऐसे आते हैं जिसमें स्कैनर्स भी होता है और प्रिंटर भी होता है। प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि देखिए स्कैनर और प्रिंटर में बेसिक डिफरेंस क्या है, आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए या फिर आपकी कोई मार्कशीट है, तो मार्कशीट आपको स्कैन करनी है कि आप उसे कंप्यूटर में स्टोर कर सकें, तो आप स्कैनर यूज़ करते हैं। और प्रिंटर क्या कहता है कि इनकेस आपके पास अभी मार्कशीट नहीं है, आपके घर पे है, बट आपको मार्कशीट की रिक्वायरमेंट है, तो पहला ये है कि आप घर पे फ़ोन कीजिए और किसी से कहिए कि वो मार्कशीट लेके आए। अगर आपका घर आपसे यहाँ से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है तो दैट इज़ वेरी हेक्टिक टास्क। तो सेकेंड ऑप्शन क्या है कि आपके पास सॉफ्ट कॉपी आपके कंप्यूटर में स्टोर हो और उसे आप मेल पर भी अटैच कर रखे हों, तो किसी भी नियर बाई साइबर कैफ़े पे आप जाइए या फिर किसी पर्सन के पास जाइए जिसके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, तो आप उसकी सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करके उसे प्रिंट ऑप्शन दे सकते हैं। तो उसके बाद क्या होगा कि आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगी आपके जो मार्कशीट थी, मे बी वो ओरिजिनल नहीं है, लेकिन वो जो है आप उसे ब्लैक एंड वाइट या फिर कलर्ड दोनों में ले सकते हैं, और फिर जहाँ भी आपको यूज़ में है आप उसे दे सकते हैं। तो स्कैनर क्या करेगा, वो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है, और प्रिंटर उस सॉफ्ट कॉपी को, किसी भी सॉफ्ट कॉपी को जो है वो हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। तो हार्ड कॉपी की क्या मीनिंग है, जैसे पेजेस आपके हैं ये हार्ड कॉपी है, और सॉफ्ट कॉपी की क्या मीनिंग है, सॉफ्ट कॉपी की मीनिंग है कि वो कंप्यूटर में जिस फॉर्म में स्टोर होता है दैट इज़ अ सॉफ्ट कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इमेज फाइल भी हो सकती है, पीडीएफ फाइल भी हो सकती है, या फिर डॉक फाइल भी हो सकती है, मतलब डॉक्यूमेंट्स फाइल जैसे आपका एम एस वर्ड में .doc से स्टोर होता है वो भी हो सकती है। फिर इनपुट डिवाइसेस में हम टच स्क्रीन की बात करते हैं, तो आजकल आप देखें कि टैबलेट आते हैं या फिर मोबाइल आता है तो उसमें जो टच स्क्रीन है वो टच पैनल वो आपका इनपुट डिवाइस की तरह वर्क करता है, सो दैट इज़ ऑल्सो इनपुट डिवाइस। उसमें आप कीबोर्ड भी ले सकते हैं, वर्चुअल कीबोर्ड्स भी उसमें रहते हैं जिसको, या फिर कीपैड हम कहते हैं, और उसको यूज़ करके हम अपने वर्क को परफॉर्म करते हैं। फिर इनपुट डिवाइसेस में माइक्रोफोन्स आते हैं, तो माइक्रोफोन इज़ एन इनपुट डिवाइस, वो क्या करता है, वो वॉइस एज अ इनपुट लेता है और वॉइस कम्युनिकेशन को परफॉर्म करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें सिंपल आपका मोबाइल, तो मोबाइल में क्या है कि आपने कोई नंबर डायल किया और आप जो भी बोलते हैं वो वॉइस जो है दूसरी तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है, तो वो भी एक आपका जो है माइक्रोफोन की तरह है कि आपने जो है उस वॉइस को कहीं रिकॉर्ड किया और वो दूसरी तरफ ट्रांसफ़र हो गई। तो रियल टाइम में अगर हम देखें अच्छे से विजुलाइज़ करने के लिए, तो लोग उसे चैटिंग या फिर कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जो है माइक्रोफोन यूज़ करते हैं। तो आप डेस्कटॉप से सेपरेटली माइक्रोफोन अटैच कर सकते हैं, जैसे उसको डेस्कटॉप माइक्रोफोन कहते हैं, या फिर हैंडहेल्ड माइक्रोफोन भी आप यूज़ कर सकते हैं, और उसको अटैच करने के बाद आप उसमें कॉन्फ्रेंस या फिर सेमिनार कहीं आपको देना है या लेक्चर्स देने हैं थ्रू ऑनलाइन, तो माइक्रोफोन के थ्रू आप दे सकते हैं। तो जो आपकी वॉइस को स्टोर करके सेकेंड साइड ट्रांसफ़र करता है, दैट इज़ अ माइक्रोफोन। और कई ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसमें माइक्रोफोन और आपका जो है स्पीकर एक साथ अटैच होता है। तो जैसे आप कहते हैं ना हेडफोन आपके साथ रहते हैं, तो हेडफोन आपने ले लिया, वो आपको जो भी वॉइस है वो आपको सुनाई देता है। लेकिन माइक्रोफोन से क्या होगा कि फिर वो आप जो भी बोलेंगे वो स्टोर होकर के दूसरी तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो दीज आर द इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस का क्या काम था कि सारी इन्फॉर्मेशन आप स्टोर करें एज ए डिवाइस से और कंप्यूटर में उसको ट्रांसफ़र कर दे। और कंप्यूटर की क्या मीनिंग है, आपके सीपीयू में उसको ट्रांसफ़र कर दे, जिसमें वो प्रोसेसिंग परफॉर्म कर सके या फिर स्टोर कर सके उसको। और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जो उसको डिस्प्ले करें या आपको रियलाइज़ करें कि हाँ जो भी आपके सॉफ्ट फॉर्म था वो उसे आप हार्ड कॉपी भी आप ले सकते हैं या कहीं कहीं नहीं वो विजिबल हो। जैसे आपने, मैंने कहा कि आपने कैलकुलेट कर दिया ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी, बट ये होने के बाद अगर कोई रिजल्ट आता है तो वो आपके आउटपुट डिवाइस पे विजिबल होना चाहिए। तो अगर हम कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइसेस की बात करते हैं तो वो कौन कौन सी हो सकती हैं, मॉनिटर हो सकता है जो आपका डिस्प्ले स्क्रीन है, या प्रिंटर हो सकता है, प्लॉटर्स हो सकते हैं, स्पीकर्स हो सकते हैं जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है स्पीकर। तो मॉनिटर की पहले हम बात करते हैं। तो मॉनिटर्स अगर हम देखें, पहले सीआरटी मॉनिटर्स आते थे, टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स में कैथोड रे ट्यूब, ये टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू मॉनिटर आपका बनता था। तो वो काफ़ी हैवी मॉनिटर्स हुआ करते थे और आपको आप उसे आप देखें केवल 5 या 10 ईयर बैक सिर्फ सीआरटी मॉनिटर्स या यूज़ होते थे। कॉस्ट की बात करें तो इन कंपेयर टू एलसीडी मॉनिटर जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, उस मॉनिटर के कंपैरिजन में जो है आपका सीआरटी मॉनिटर थोड़ा सस्ता आता है, बट वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस कवर करता है। तो अगर आपको कम स्पेस में आपको अपना कंप्यूटर सिस्टम रखना है तो आपको एलसीडी मॉनिटर रखना पड़ेगा। अभी क्या है, एलईडी मॉनिटर्स भी आ गए हैं। एलईडी जो है वो ज़्यादा उसे अगर वेट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कम वेट होता है एलईडी मॉनिटर्स का। अगर हम एक सीक्वेंस देखें तो सीआरटी मॉनिटर्स के वेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उसके बाद एलसीडी होते हैं, फिर एलईडी होते हैं। लेकिन अगर कॉस्ट की बात करें तो यही एलईडी की कॉस्ट ज़्यादा होती है, एलसीडी की हो सके उससे कम होगी और सीआरटी की उससे भी ज़्यादा कम होगी। सीआरटी मॉनिटर्स अगर देखें मैक्सिमम ये जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल की तरह वर्क करते हैं, जैसे एक टेलीविज़न स्क्रीन रहता है। तो टेलीविज़न स्क्रीन में अगर आप देखें तो उसमें सीआरटी की एक आपकी कैथोड रे रहती थी जो आपको स्क्रीन पे ब्लिंग अटैक करती थी और उससे जो है डिस्प्ले जनरेट होता था। तो उसी बेस पे आपका कंप्यूटर का भी सीआरटी मॉनिटर एग्जिस्ट करता है, बट इट इज़ अ आउटपुट डिवाइस फॉर द कंप्यूटर। तो इसमें टाइप्स ऑफ की बात हमने क्या कर ली, कैथोड रे ट्यूब टेक्नोलॉजी से मॉनिटर बन सकता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले से मॉनिटर बन सकता है, या फिर एलईडी से मॉनिटर बन सकता है। जो मॉनिटर पे जो आपका डिस्प्ले होता है उसका एक रिजोल्यूशन होता है। अगर आप देखें कि अगर नाउ डेज अभी तो सबके पास मोबाइल है, आपने कभी यूट्यूब यूज़ किया हो तो उसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है, तो उसमें जो आपकी वीडियो की क्वालिटी है आप उसमें लिखते हैं 140p या 240p, 240 पिक्सल्स पे है, 720p पिक्सल पे है, तो जैसे ही आप उसकी पिक्सल्स रेंज बढ़ाते जाते हैं उसकी क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाती है, वो हाई डेंसिटी की तरफ जो है वो मूव कर जाता है। तो इसी तरह से जो डिस्प्ले स्क्रीन होती है कंप्यूटर की, तो उसमें भी आपका जो है रिजोल्यूशन होता है कि 800x600 पिक्सल्स। 800x600 पिक्सल की क्या मीनिंग है कि 800 आपके कॉलम्स हो और 600 आपके रोज़ हो, इस तरीके से आपका स्क्रीन डिवाइडेड है। तो मतलब अगर हम एजम्पशन लेते हैं कि अगर कोई स्क्रीन है, डिस्प्ले स्क्रीन है, वो 1 मीटर आपकी विड्थ है और 1 मीटर आपकी जो है उसकी लेंथ है। अगर उस पूरी स्क्रीन को हम 800x600 पिक्सल्स में डिवाइड करें तो उसके जो पिक्सल्स की साइज है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। तो जब पिक्सल्स की साइज़ ज़्यादा होगी ना, तो उसमें क्या होगा कि आपकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आएगी जितनी 124x768 पिक्सल्स पे आनी है। तो 124x768 का क्या मीनिंग है कि 124 आपके कॉलम्स हैं, 768 आपके रोज हैं। तो जो आपने ईच पिक्सल की साइज़ क्या कर दी, आपने छोटी कर दी, और नंबर ऑफ पिक्सल्स आपने इंक्रीज़ कर दिए सेम एरिया के लिए। तो जब आप पिक्सल की साइज़ छोटी करते जाते हैं तो उससे क्या होगा कि आप ज़्यादा कलर और अच्छी डिफिनीशन की जो है इमेज आपको गेन होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो भी आपका रिजोल्यूशन है हम उसको हाईएस्ट रिजोल्यूशन पे रखते हैं कि हमें को जो क्वालिटी मिले वो अच्छी मिले। बट अगर आप एक कंप्यूटर में बात करें डिस्प्ले मॉनिटर के डिस्प्ले स्क्रीन की, जैसे जैसे आप रिजोल्यूशन बढ़ाते जाते हैं उसमें क्या होती है, क्वालिटी तो बढ़ जाएगी कि आपको चीज़ें अच्छी विजिबल होंगी, बट उसकी साइज़ भी अगर आप देखें तो वो छोटी होती जाती हैं। मतलब अगर आपने 800x600 पिक्सल में मॉनिटर को एडजस्ट कर रखा है तो आप देखेंगे कि जो डेस्कटॉप पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपके रिसाइकल बिन तो रहता ही है और माई कंप्यूटर रहता है, तो उसकी जो साइज़ है वो जो 800x600 पिक्सल पे है जब आप रिजोल्यूशन चेंज करके 1024x768 कर देंगे तो उसकी साइज़ आपको थोड़ी छोटी नज़र आएगी, और जब उसको 1280x1024 पे कर देंगे तो उसकी साइज़ और छोटी हो जाएगी। क्वालिटी आपको लगेगा कि क्वालिटी इंक्रीज़ हो गई है, जो आपको विजिबल हो रहा था वो अच्छे से विजिबल है बट साइज़ उसकी छोटी होती जाएगी। तो इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न यही है कि सेम लेंथ होती है और सेम लेंथ को आप जो है छोटे छोटे पिक्सल्स में डिवाइड कर देते हैं, तो इसलिए उनके साइज़ जो है रिड्यूस हो जाते हैं डिस्प्ले स्क्रीन में। तो मॉनिटर एक आपका आउटपुट डिवाइस है, ऐसे ही आपका प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर में बहुत सारे प्रिंटर्स आजकल आते हैं, जैसे लेज़र प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है। तो लेज़र प्रिंटर प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी प्रिंट एट दैट वन नॉर्मली फाइंड इन पब्लिशिंग, और ये यूजिंग लेज़र टेक्नोलॉजी के थ्रू आप जो है लेज़र प्रिंटर परफॉर्म कर सकते हैं। तो नॉर्मली लेज़र प्रिंटर जो है आपका कैन प्रिंट 200 पेज पर मिनट। मतलब अगर आपको सॉफ्ट कॉपी है कोई आपके कंप्यूटर में और आपको प्रिंटिंग परफॉर्म करना है और आपने लेज़र प्रिंटर यूज़ किया है तो आप 200 पेज जो है पर मिनट जो है उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये इन मोनोक्रोम भी हो सकता है, और जब हम कलर की बात करेंगे तो 100 पेज के अप्रॉक्सीमेटली हम जो है पेज प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो मोनोक्रोम की क्या मीनिंग है, तो मोनोक्रोम की मीनिंग है कि आपने जो प्रिंटिंग परफॉर्म करना है वो आपने ब्लैक एंड वाइट में परफॉर्म करना है, और जब आपको कलर में परफॉर्म करेंगे तो आपको बहुत सारे कलर्स रिक्वायर्ड रहते हैं। ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक भी एक कलर ही है बट इसके अलावा जो आपके रेड ग्रीन है ये सारे इंक्लूडेड हो जाएंगे, और तब जो है लेज़र की जो प्रिंटिंग की कैपेबिलिटी है वो थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी, नियर अबाउट हाफ ये हो जाएगी, और ये 100 पेज पर मिनट प्रिंट कर सकता है। फिर आपके आउटपुट डिवाइसेस में प्रिंटर के पार्ट्स में इंकजेट प्रिंटर है, तो इंकजेट जो है प्राइमरी क्रिएट्स एन इमेज डायरेक्टली ऑन पेपर बाय स्प्रेइंग इंक थ्रू एज मेनी एज 64 टीनी नोजल्स। तो इसके थ्रू जो है ऑल्दो द इमेज इट प्रोड्यूसेस इज नॉट जनरली क्वाइट एज शार्प एज अ आउटपुट ऑफ अ लेज़र प्रिंटर, सो इफ़ यू कंपेयर इट विद लेज़र प्रिंटर यू विल फाइंड दैट इंकजेट प्रिंटर क्वालिटी इज़ नॉट एज गुड एज इन कम्पेयर टू लेज़र प्रिंटर। बट हम इंकजेट प्रिंटर भी कई जगह यूज़ करते हैं। फिर आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है, फिर लाइन प्रिंटर्स आते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ प्रिंटर जो है वो उनके यूजेस के अकॉर्डिंग हम उसे अपने घर में या फिर ऑफिस में उसको परचेज करते हैं। जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की हम बात करें तो करेक्टर पर सेकेंड जो इसकी यूनिट है कि कितने करेक्टर पर सेकेंड ये प्रिंट कर सकती है। ऐसे प्रिंटर्स में जो है प्लॉटर्स यूज़ करते हैं, आपको बहुत बड़ी स्क्रीन पे आपको कोई चीज़ प्लॉट करनी है तो उसके लिए हम जो है प्लॉटर यूज़ करते हैं। तो प्लॉटर्स अगर हम देखें तो ये टू डिज़ाइंस में आती हैं, एक तो फ्लैट बेड आता है दूसरा ड्रम। तो फ्लैट बेड प्लॉटर्स ऑफ दीज आर द स्मॉल साइज एंड टू बी केप्ट ऑन टेबल विथ रेस्ट्रिक्शन ऑफ पेपर साइज। और जो सेकेंड है आपका ड्रम प्लॉटर, तो दीज प्लॉटर्स आर अ बिग साइज एंड यूजिंग रोल्स ऑफ पेपर ऑफ अनलिमिटेड लेंथ। फिर आउटपुट डिवाइसेस में आपका आता है स्पीकर्स। तो स्पीकर्स आपका देखें तो आपकी जनरल लाइफ में सबसे ज़्यादा आउटपुट डिवाइस अगर कोई यूज़ होता है तो वो है स्पीकर्स। तो स्पीकर्स आर अनदर टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस विच अलाउ यू टू लिसन टू वॉइस लाइक म्यूजिक एंड कन्वर्सेशन विद पीपल। तो नॉर्मली अगर आप देखें किसी भी कंप्यूटर से बहुत सारे स्पीकर्स आप आजकल आते हैं जिसको हम कनेक्ट करते हैं, चाहे वो हेडफोन में हो या फिर सेपरेट आपका स्पीकर हो, या फिर आपने कई लोग बुफर यूज़ करते हैं 5.1 7.1 इस तरीके को। स्पीकर क्या होता है, वो क्या करता है कि जो भी आपका प्रोसेसिंग कंप्यूटर में परफॉर्म हो रहा है, जैसे आपने एक आपको सॉन्ग सुनना है तो अगर आपको सॉन्ग सुनना है तो कोई आउटपुट डिवाइस होना चाहिए, क्योंकि सॉन्ग तो एज ए सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर में स्टोर्ड है। तो आप क्या करते हैं कि उस पर कोई किसी भी सॉन्ग पे डबल क्लिक करते हैं या फिर उसको रन करते हैं, तो वो जब रन करता है तो एज अ आउटपुट डिवाइस हम उसे स्पीकर यूज़ करते हैं कंप्यूटर के साथ, जिससे हम वो सॉन्ग जो है लिसन कर सकते हैं। तो ये आपके क्या थे, आउटपुट डिवाइसेस थे। तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में हमने देखा इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। अब उसके जो प्रोसेसिंग में है, तो प्रोसेसिंग में आपका मेमोरी आता है जिसमें प्रोसेसिंग होना है, प्रोसेसर आता है। तो मेमोरी में आपका जो है प्राइमरी मेमोरी हो सकती है और सेकेंडरी मेमोरी हो सकता है। तो प्राइमरी मेमोरी में हमने देखा रैम रोम आएंगे, और सेकेंडरी मेमोरी में आपको हार्ड डिस्क आएगा, सीडी रोम आएगा, या फिर डीवीडी आएगा, या पेन ड्राइव आएगा। जो सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज हैं दैट आर ऑल्सो नोन एज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी की क्या मीनिंग है? तो नॉन वोलेटाइल की मीनिंग ये है कि अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन सेव कर रखी है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पे, तो वो क्या करेंगे, अगर आपने कंप्यूटर टर्न ऑफ हो गया किसी भी रीज़न से, या फिर आपने उसे रीस्टार्ट कर दिया या शट डाउन कर दिया, और आफ्टर सम टाइम आपने उसे फिर से यूज़ करना चाहें एक दो दिन बाद, तो आप देखेंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके सेकेंडरी स्टोरेज पे स्टोर्ड है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बट अगर प्राइमरी मेमोरी की बात की जाए तो प्राइमरी मेमोरी कहाँ यूज़ होता है, जैसे आप गेम खेल रहे हैं, या फिर आप मोबाइल का हम एक एग्जांपल लेते हैं, मोबाइल पे अगर आपने कोई गेम खेल रहे हैं तो वो गेम का एग्जीक्यूशन किस में हो रहा है, प्राइमरी मेमोरी में। किसी कारणवश अगर आपका कंप्यूटर जो या मोबाइल आपका गिर गया या फिर टर्न ऑफ हो गया, तो अगर आप उसे रीस्टार्ट करेंगे तो देखेंगे कि गेम आप जो खेल रहे थे या फिर जिस स्टेज पे थे वो आपको विजिबल नहीं होगा। क्यों विजिबल नहीं होगा? क्योंकि जो रैम है दैट इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी, वो केवल उन्हीं इंस्ट्रक्शन को स्टोर करेगा जो आपके करेंटली एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और जैसे ही आपने कंप्यूटर मोबाइल लैपटॉप जो जिस पे भी आप उसको यूज़ कर रहे हैं, जो आर्किटेक्चर एक्सेप्ट करता है कंप्यूटर का, उसको अगर आपने टर्न ऑफ कर दिया तो सिर्फ सेकेंडरी स्टोरेज की इंफॉर्मेशन ही आप उसे स्टोर कर यूज़ कर सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी केवल जो है एग्जीक्यूशन वाले प्रोसेस को वो आप रिट्रीव नहीं कर सकते। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जब भी आपको प्राइमरी मेमोरी की कॉन्फ़िगरेशन कब आपको ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, अगर आपको केवल सॉन्ग सुनने हैं, केवल गेम्स वीडियो देखने हैं, या फिर सिंपल डॉक्यूमेंट फाइल पे काम करना है, तो आपको रैम की उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपको गेम खेलना है तो आपको रैम ज़्यादा चाहिए। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि गेम के जो फाइल होते हैं उनकी साइज़ काफ़ी ज़्यादा होती है, जबकि डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल अगर हम देखें तो डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल जो है आप सीधे इनपुट आउटपुट प्रोसेस होता है। तो इनपुट आउटपुट प्रोसेस जो है हम मेमोरी और प्रोसेसर में केवल इनपुट आउटपुट अगर प्रोसेसिंग परफॉर्म हो रहा है तो हमें ज़्यादा मेमोरी रिक्वायर्ड नहीं होती है हमें। और इवन डॉक्यूमेंट्स के अगर हम देखें साइज़, तो डॉक्यूमेंट की भी साइज़ हम जैसे मैक्सिमम 1 MB 2 MB इस तरीके से हम स्टोर करते हैं। बट गेम की साइज़ एग्जीक्यूशन फाइल जो है कई बार वो 1 GB को भी क्रॉस कर जाती है। इसलिए अगर आपको ऑफिस पर्पज़ के लिए कोई कंप्यूटर परचेस करना है तो उसमें बहुत सारा हाई कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड नहीं है, अगर आपका ऑफिस सिर्फ डेटा एंट्री ऑपरेशन पे वर्क करता है। अगर आपका ऑफिस डेवलपमेंट पे वर्क करता है या ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा यूजेस है, तो डेवलपमेंट किसी का भी हो सकता है, किसी सॉफ्टवेयर टूल का हो सकता है, गेम भी एक आपका जो है सॉफ्टवेयर का पार्ट है डेवलपमेंट का, तो वहाँ पर आपको हाई कॉन्फ़िगरेशन का रैम रिक्वायर्ड होता है। तो इसलिए अपनी रिक्वायरमेंट की बेस पे ही आप उसमें सेकेंडरी स्टोरेज या प्राइमरी स्टोरेज यूज़ करें। तो जब भी आपको कंप्यूटर परचेस करना है, क्योंकि अभी हमने इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग के पार्ट को डिस्कस कर लिया है, तो अगर आप कंप्यूटर परचेस करना चाहते हैं तो आपको बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन की कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है आपकी लाइफ में। तो कई बार क्या लोग क्या करते हैं कि उन्हें लगता है कि लेटेस्ट में अगर आपका i7 चल रहा है, 4 GB रैम जो है हमारे लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन है, और क्या कहते हैं उसमें विंडोज़ 10 इंस्टॉल्ड है, इस तरीके से वो सोचते हैं कि हम इस पे पैसे खर्च करते हैं और एक लेटेस्ट कंप्यूटर या लैपटॉप परचेस कर लेते हैं, वो उनके यूज़ में आ जाएगा। बट बाद में ये रियलाइज़ होता है कि आपको तो काम सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन करना था, तो आपने इतने पैसे क्यों खर्च किए, मतलब आपने 50,000 खर्च कर दिए एक लैपटॉप परचेस करने में, जबकि वही काम आप 20,000 के लैपटॉप में सेम कर सकते हैं। तो इसलिए आप अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे ही कंप्यूटर हमेशा परचेस करें। अब कंप्यूटर में कंपोनेंट्स में हमने बात कर ली थी इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग के पार्ट की, अब हम बात करते हैं कि जब आपने कंप्यूटर परचेस कर लिया और उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड नहीं है, तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट करता है और वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि आप कंप्यूटर से इंटरेक्ट हो सकें, तो उसके लिए हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो सॉफ्टवेयर आर सेट ऑफ प्रोग्राम्स, और ये टू टाइप्स के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, जो आपके सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, और सिस्टम की मीनिंग क्या है, जो आपकी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। तो हार्डवेयर डिवाइसेस में आपका मॉनिटर आता है, कीबोर्ड आता है या फिर माउस आता है, इवन होल कंप्यूटर इज ऑल्सो अ डिवाइस। तो अगर कोई सॉफ्टवेयर आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करे कि आप सारे डिवाइसेस से एक साथ इंटरेक्ट कर सकें, तो वो सॉफ्टवेयर आपका एज अ नोन होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमने देखा कि विंडोज 10 आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 7 आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, या विंडोज 8.1, दीज आर द ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगर लिनक्स की बात की जाए तो उसमें आप उबुंटू यूज़ कर सकते हैं, रेड हैट यूज़ कर सकते हैं एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करेंगे, कंप्यूटर से इंटरेक्ट हो सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने का प्रोसीजर क्या है, आप मार्केट से अगर आप विंडोज़ यूज़ करना चाहते हैं तो लाइसेंस्ड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम परचेस कीजिए, और उसकी डीवीडी को आप अपने कंप्यूटर में डीवीडी जो स्लॉट है उसमें आप इंसर्ट कीजिए, और जैसे ही वो बूट करेगा तो बूट का ऑप्शन में आप उसे डीवीडी मेंशन कीजिए, और जब वो बूट करके इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी तो उसके इंस्ट्रक्शन को आप रीड करते जाइए, उसके अकॉर्डिंग आप जो है एक्ट परफॉर्म कीजिए, फिर लास्ट में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम पे पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं तो आपको सजेशन है कि आप जो है उबुंटू यूज़ कर लीजिए। उबुंटू जो है फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, कहीं से भी मिल जाएगा, ऑथेंटिक है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसका एक बूटेबल डिस्क बनाइए, या फिर मार्केट में बहुत कम पैसे में आपको उबुंटू का ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा, उसको डीवीडी की स्लॉट में, जो आपने बेयर कंप्यूटर परचेस किया है उसकी डीवीडी की स्लॉट में आप उबुंटू रखिए और उसको बूट कीजिए। और बूटेबल प्रेफरेंस आपका क्या होना चाहिए, डीवीडी। तो एक क्वेश्चन आता है, क्या हमेशा डीवीडी में ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करा सकते हैं, किसी और तरीके से इंस्टॉल नहीं कर सकते? तो इसका आंसर है जी, आपको जो है पेन ड्राइव के थ्रू भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, नेटवर्क के थ्रू भी आप अपने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आपको डीवीडी ही चाहिए, तो आप पेन ड्राइव को बूटेबल बनाइए, और पेन ड्राइव को बूटेबल बना के आप पेन ड्राइव की जो स्लॉट है यूएसबी की, आप उसमें इंसर्ट कीजिए और उसमें उसके थ्रू बूटिंग परफॉर्म कीजिए। लेकिन जब आप यूएसबी स्लॉट में बूटिंग परफॉर्म करेंगे तो आपका जो सिलेक्शन है बूटिंग का, वो आपका पेन ड्राइव होना चाहिए। ऐसे ही अगर आप नेटवर्क के थ्रू बूटिंग परफॉर्म कराना चाहते हैं तो आप नेटवर्क सेलेक्ट कर सकते हैं बूटिंग का, और किसी नेटवर्क से कनेक्ट करके अपने कंप्यूटर को आप ऑपरेटिंग सिस्टम से इनबिल्ट कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद आपका कंप्यूटर जो है कीबोर्ड को भी एक्सेप्ट करेगा, मतलब कीबोर्ड से आप कोई इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो कंप्यूटर में डिस्प्ले होगा, मॉनिटर भी प्रॉपरली डिस्प्ले की तरह वर्क करेगा, माउस जो है आपका एज अ पॉइंटर इनपुट की तरह वर्क करेगा। तो ये फैसिलिटी आपको कब मिली, जब आपने एक सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ऐसे यूटिलिटीज़ सॉफ्टवेयर होते हैं, तो यूटिलिटीज़ सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जैसे आपका प्रिंटर आपने एक परचेस किया और वो प्रिंटर आपने जो है अपने कंप्यूटर से कनेक्ट किया, बट उस प्रिंटर को अगर वो आपका प्लग एंड प्ले जैसा नहीं है तो क्या होता था पहले कि प्रिंटर के साथ एक डिवाइस ड्राइवर्स आते थे, कि मतलब जब भी आप प्रिंटर परचेस करेंगे तो उसका डिवाइस ड्राइवर भी आपको कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है, तभी आप उस प्रिंटर को यूज़ कर पाएंगे। तो वो यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर आते थे। ऐसे ही आपका स्कैनर्स का भी डिवाइस ड्राइवर आता है, तो डिवाइस ड्राइवर इज़ ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द दैट डिवाइस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने डिवाइस ड्राइवर नहीं इंस्टॉल किया और स्कैनर आपने कनेक्ट कर दिया, तो आप देखेंगे आपका स्कैनर काम ही नहीं करेगा। तो स्कैनर को यूज़ करने के लिए आपको कोई एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिससे आप इंटरेक्ट कर सकें। जैसे आपने बेयर कंप्यूटर परचेस किया था और उस कंप्यूटर से इंटरेक्ट होने के लिए आपको क्या चाहिए था? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया था। ऐसे ही जब कोई एक्सटर्नल डिवाइस आप अपने कंप्यूटर से अटैच करते हैं, तो उससे अटैचमेंट, उसको यूज़ करने के लिए आपको यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। और हर एक डिवाइस की जो एक्सटर्नल डिवाइस होती है, उसकी यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर या तो आप सेलर से ले सकते हैं या फिर उस कंपनी को आप मेल करके उसका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आप ले करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं? यू कैन कंट्रोल द हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर। तो कंट्रोलिंग का मतलब यूज़ करना है, रिसोर्सेज को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में सेकेंड पार्ट आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे MS Word, आप किसी एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, मतलब हमेशा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर इंस्टॉल करेंगे। अगर हम बेसिक आर्किटेक्चर देखें कंप्यूटर का, तो वो क्या था? जब आपने पहले कंप्यूटर परचेस किया तो एक हार्डवेयर था, उस हार्डवेयर के ऊपर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया। अब आपको कोई एप्लीकेशन यूज़ करना है, तो उसके लिए उसके ऊपर आप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे आपको गेम खेलना है तो वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो MS Word दैट इज़ ऑल्सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और दैट प्रोडक्ट इज़ फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। तो वैसे MS का पूरा MS Office पैकेज आता है, जिसमें MS Word, MS Excel, पावर पॉइंट, ये सब कुछ इंक्लूडेड होते हैं। तो ये सारे क्या एज अ नोन होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सिर्फ इतना यूज़ है कि आप स्पेशल पर्पज़ के लिए आप उसे यूज़ करते हैं, और इसका किसी हार्डवेयर को कंट्रोल करने का कोई इसमें मीनिंग नहीं होती। मतलब अगर आप MS Word अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल ना करें, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपका प्रिंटर यूज़ में आए, जबकि प्रिंटर का आपने डिवाइस ड्राइवर पहले से इंस्टॉल कर रखा है, अगर प्रिंटर का डिवाइस ड्राइवर आपने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो ऑब्वियसली कोई भी डॉक्यूमेंट होगा उसको आप प्रिंटर से कनेक्ट कर सकते हैं, प्रिंटर से प्रिंट आउट ले सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल किए हुए हैं, तब भी अगर आपने PDF कर रखा है तो कोई PDF का डॉक्यूमेंट होगा उसको आप प्रिंट दे सकते हैं। बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फिर यूज़ कहाँ पे आता है? जैसे आपको एक थीसिस बनानी है या फिर नोट्स बनाने हैं, तो उसके लिए आप MS Office इंस्टॉल करते हैं। ऐसे ही आपका एक्रोबेट रीडर भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या फिर आपको सॉन्ग सुनना है तो सॉन्ग सुनने के लिए आपको एक फ़ाइल दे दी जाती है कि MP4 फाइल है। लेकिन अगर वो MP4 फाइल आपके फ्रेंड ने आपको किसी पेन ड्राइव में या फिर डिस्क में आपको कॉपी करके दे दिया, और आपके कंप्यूटर पे सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, तो क्या आप उसको रन कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, आप उसे रन नहीं कर सकते। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न सिर्फ यही है क्योंकि वो जो MP4 फाइल थी, .MP4 फाइल या MPEG4 फाइल है, जो ऑडियो या वीडियो फाइल आपने अपने फ्रेंड से ले रखा है, वो रन करने के लिए उसका रिलीवेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल नहीं कर रखा है। तो उसका रिलीवेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हो सकते हैं? नॉर्मल लोग VLC प्लेयर डाउनलोड कर लेते हैं, VLC प्लेयर इंस्टॉल कर लेंगे, विंडोज़ के साथ विंडो मीडिया प्लेयर आता है, तो उस पर आप उसको जब रन करेंगे तो आप सॉन्ग को सुन सकते हैं। मतलब विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर आपके पास आउटपुट डिवाइसेस हैं भी, तो भी आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, आप उसे लिसन करना चाहते हैं, सॉन्ग सुनना चाहते हैं, तो पहले तो आपके पास स्पीकर होना चाहिए, सेकेंड उसका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो उस फाइल को रन कर सके। ऐसे ही अगर आपने किसी से थीसिस लिया है या PDF ले रखा है, डॉक्यूमेंट्स ले रखे हैं, उसको आप अपने कंप्यूटर पे ओपन करना चाहते हैं, तो उसके रिलेवेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको फर्स्ट इंस्टॉल करने चाहिए। ऐसे ही अगर आपने डेटाबेस से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको माई एस क्यू एल सर्वर या ओरेकल आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड होना चाहिए। एमएस ऑफिस के साथ एमएस एक्सेस आता है जो डेटाबेस से इंटरेक्शन की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। तो एमएस एक्सेस को यूज़ करके अगर एमएस एक्सेस की फाइल पहले से कहीं स्टोर्ड है और आप उसे अपने कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र करके यूज़ करना चाहते हैं तो आप पे भी एमएस एक्सेस इंस्टॉल्ड होना चाहिए। फिर इमेज फाइल से इंटरेक्शन के लिए आपको जो है पेंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या फोटोशॉप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ये आपको जो है कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर आप किसी इमेज फाइल से इंटरेक्ट होना चाहते हैं, उसमें कुछ एडिटिंग परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको ग्राफिकल टूल्स इंस्टॉल करने चाहिए। फिर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स आते हैं, तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो है आप किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, जैसे आपको स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है तो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम नॉर्मली हम कॉलेज में यूज़ करते हैं, अब वो एक कॉलेज बेस्ड पर्पज़ है तो उसमें अगर आपने अटेंडेंस सिस्टम मेंटेन करना है तो एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर आप डेवलप कराएंगे, चाहे वो अपने स्टूडेंट से डेवलप कराइए या बाहर से डेवलप कराइए, तो वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर रहेगा और वो अटेंडेंस सिस्टम आपका मेंटेन करेगा आपके कॉलेज का। इट्स मीन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं दो आर ऑल्सो टू टाइप्स, एक तो जनरलाइज पैकेज बेस हो सकता है, दूसरा कस्टमाइज पैकेज बेस होता है, और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर इंस्टॉल्ड होंगे। मतलब अगर आपके पास एक कंप्यूटर है, सिर्फ हार्डवेयर डिवाइस है और आप चाहें कि आपका जो है उस पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दें और जबकि उस आप जो है ओएस आपने कोई इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो ये पॉसिबल नहीं है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि एक हर एक कंप्यूटर का एक बेसिक आर्किटेक्चर है कि हार्डवेयर इंस्टॉल्ड हो, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो और फिर कहीं जाके यूज़र आता है। तो यूज़र में जैसे हमें अगर वो कंप्यूटर यूज़ करना है और कोई मूवी चलानी है तो मूवी से रिलेटेड जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल होगा और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो है वो हार्डवेयर डिवाइसेस जितनी हैं उसको कंट्रोल करता है और उससे इंटरेक्शन की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है। तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम कभी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। और जो कस्टमाइज पैकेजेस होंगे वो आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही स्पेशली यूज होंगे, जैसे एमएस वर्ड है वो जनरलाइज्ड है तो किसी भी ऑफिस में यूज़ हो सकता है, लेकिन अगर आपका अटेंडेंस सिस्टम है तो वो अटेंडेंस सिस्टम मे बी उस फॉर्मेट में किसी अदर ऑफिस में यूज़ ना हो तो इसलिए वो कस्टमाइज पैकेजेस हो जाता है। अब हमने क्या क्या बात कर ली, ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने बात कर लिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमने देखा जनरलाइज्ड पैकेज और कस्टमाइज पैकेज, और ये सॉफ्टवेयर हमें क्या हेल्प करते हैं ताकि हम हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सकें। इसके बाद आता है कि ये सारे सॉफ्टवेयर किसी न किसी लैंग्वेज में डेवलप किए जाते हैं, तो कंप्यूटर हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो कंप्यूटर लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट क्यों है। जैसे आपको किसी दूसरे पर्सन से बात करनी है तो अगर आपको हिंदी आती है और दूसरे पर्सन को सिर्फ इंग्लिश आती है तो इट्स मीन आपको अगर उसको कोई बात समझानी है तो आपको या तो इंग्लिश आनी चाहिए या तो उस पर्सन को लर्न करना चाहिए हिंदी समझने का। तो दोनों ऑप्शन में आपको क्या है कि एक लैंग्वेज है जो सेकेंड पर्सन की लैंग्वेज है तो वो फर्स्ट पर्सन को भी एज अ नोन होनी चाहिए। ऐसी कंप्यूटर में होता है, कंप्यूटर जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन को जीरो और वन में स्टोर करता है, बट हम क्या करते हैं कि हम इन्फॉर्मेशन को किस में चाहते हैं, या तो इंग्लिश लैंग्वेज में या हिंदी लैंग्वेज में या अपने कोई भी रीजनल लैंग्वेज में या कोई भी इंटरनेशनल लैंग्वेज में, हम इसमें डिस्प्ले चाहते हैं और इसी फॉर्मेट में हम इनपुट भी करना चाहते हैं, बट कंप्यूटर भी अपनी एक लैंग्वेज होती है जिसको वो सिर्फ वही अंडरस्टैंड करता है, वो सिर्फ ज़ीरो और वन अंडरस्टैंड करता है। तो इन बिटवीन हम एक ट्रांसलेटर यूज़ कर लेते हैं जो हमारी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, और जब हमें रिक्वायरमेंट होती है तो कंप्यूटर पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसलेटर हमें हमारी लैंग्वेज में हमें डिस्प्ले कर देता है। तो कंप्यूटर के लैंग्वेजेस कितने टाइप्स के हो सकते हैं, एक तो होता है लो लेवल लैंग्वेज, फिर होता है मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो लो लेवल लैंग्वेज के पार्ट्स हैं मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज आपका जीरो और वन फॉर्मेट में, क्योंकि कंप्यूटर हमने स्टार्टिंग से कहा है सिर्फ दो ही टर्म समझता है, या तो जीरो या तो वन। अगर हमने मेमोरी लिखा हुआ है तो फॉर मी इट इज़ एम ई एम ओ आर वाई, बट फॉर कंप्यूटर ये मेमोरी एक 01 फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा और वो कंप्यूटर में स्टोर हो जाएगा। असेंबली लैंग्वेज जो है इसमें सिम्बॉलिक कोड्स यूज़ करते हैं और वो सिमिलर टू मशीन लैंग्वेज होती हैं, तो न्यूमोनिक कोड्स भी कहते हैं। तो उस इन्फॉर्मेशन को जो आप है वो कंप्यूटर भी उसमें स्टोर करता है। और हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती हैं जिसमें हम इन्फॉर्मेशन जो है उसको ईजली रीड कर सकें और कंप्यूटर को हम ट्रांसफ़र कर सकें। तो कम लैंग्वेज की यूज़ से हम क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो लिसनर्स, हमने जो है अभी आज बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स देखे, कंप्यूटर्स के कंपोनेंट्स देखे, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग का पार्ट, और उस बेयर कंप्यूटर को अगर हमें यूज़ करना है तो हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने होते हैं, तो सॉफ्टवेयर के भी हमारे पार्ट्स हमने देखे, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमने लैंग्वेज लर्न किए, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल।